साठ दिन ये कुछ ना कारण शरत काल भी वैसा ही। उस समय में गर्मी से धीरे धीरे सर्दी का समय होता है, ठंडा का समय, उसमें सर्दी और गर्मी का मिलन, न तो अधिक सर्दी और न अधिक गर्मी, और इसमें गर्मी सर्दी जा रही है और गर्मी धीरे 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 बहुत ही सुंदर सुहावना। वृंदावन में शारदीय रास हुई थी, शारदीय रास में साधक सिद्ध और राधा कृष्ण की परिकर गोपियां ये सभी सम्मिलित हुई। कृष्ण बंसी ध्वनि की साधक सिद्धा जौथकी अजौथकी मुनिचरी उपनिषदचरी स्तुतिचरी सब प्रकार की गोपियां उस रास में सम्मिलित हुई। इसलिए समान प्रीति देख करके कृष्ण के प्रति राधिका जी का मान हुआ, ये गोपियां और मैं सब बराबर हूं, इसलिए उनको मान हुआ। कृष्ण ने सोचा ये राधिका जी का मान प्रशमन करना चाहिए, प्रसादन करना चाहिए, और गोपियों का जो सौभाग्यमद है उसका दमन करना चाहिए। सौभाग्यमद होता है किसको कहते हैं? गोपियों में जो गोपियां थी उन्होंने देखा कृष्ण केवल हमारे हाथों में ही हाथ मिलाकर नृत्य कर रहे हैं, हमारे कंधे पर हाथ रखे हैं, हमारे गले में हाथ रख करके झूल रहे हैं, आज हमको जैसा मान दिया है आज तक कभी किसी को नहीं ऐसा मान दिया होगा, इसलिए उनको सौभाग्यमद हुआ। सौभाग्यमद कब होता है? स्त्री को उस समय सौभाग्यमद होता है जब पति उसके वशीभूत होकर जैसा वो कहती है वैसा करे, तब उसको कहते हैं सौभाग्य। इसलिए इसको कहते हैं सुहाग। सुहाग माने क्या? सुहाग माने पति का प्रेम पाना ही किसी के लिए सुहाग है। जिसको यह नहीं है वो अभागिन कही जाती है। इसलिए उस गोपियों ने सोचा ये कृष्ण आज हमारे नुपुर को बांध रहे हैं पैरों में, आज कृष्ण कहें तू थक गई, हमारे पसीने की बूंदों को पोंछ रहे हैं अपने पीतांबर से, आज हम जो कहते हैं वही कर रहे हैं, इसलिए इनको सौभाग्य मत। और वो देख रहे हैं ये केवल कृष्ण हमारे साथ हैं और किसी के साथ नहीं। दूसरी तरफ में राधिका जी देखती हैं कि अरे हमारे पास में ये रहता है, जब उधर देखते हैं तो उसके पास देखते हैं तो उसके पास, ऐसी क्षिप्र गति से नृत्य किया, समस्त गोपियों के पास में एक एक के पास में दिखलाई पड़े सबके पास, ऐसी क्षिप्र गति से। दूसरी बात वो स्वयं भगवान भी हैं, अघटन घटन पटेशी शक्ति वाली हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम समर्थ, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान कृष्ण के लिए तो ये सब संभव है, इसलिए सबके साथ में दिखाई पड़े राधिक और सब गोपियां देंगे केवल हमारे साथ, और गोपियां राधा जी देख रही हैं हमारे साथ भी और प्रत्येक गोपी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। बस राधा जी को मान हो गया, देखा जी अब राश नहीं होने का, राश के द्वारा ही राधिका जी की सर्वश्रेष्ठता स्थापित होगी जगत में, जब राशि नहीं होगा तो फिर ये होगा नहीं, इसलिए कृष्ण उस राश से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान तो हुए किंतु सुखदेव गोस्वामी ने नहीं वर्णन किया जे अकेले चले गए या कोई को साथ लिया, किंतु बड़ी स्किलफुली बड़े अलंकारिक भाषा में उसका वर्णन किया व्यंजना की रीति से, उसको वहां पर लिखा जैसे कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। गोपियों का सौभाग्य मत दूर करने के लिए, चूर्ण करने के लिए और आदिकादि का मान प्रसादन करने के लिए, मैंने पूर्ण करने के लिए, तो जिसका मान प्रसादन करना है उसको साथ में ले जाना जरूरी है, नहीं तो मान कैसे दूर होगा। इसलिए इतनी क्षिप्र गति से श्रीमती राधिका जी को साथ में लिया पकड़कर। राधिका जी भी नहीं समझ सकी, गोपियां भी नहीं देख सकी, और एक सेकंड पलक के लगते के पहले ही उन्होंने जट राधा जी को लेकर के और अंतर ध्यान नहीं हुए, एक तरफ में चले गए। गोपियां खोजने लगी, खोजते खोजते व्याकुल हो गई। वो केवल कृष्ण को खोज रही थी, किंतु थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि ये कृष्ण के बड़े सुंदर पैर के चिन्ह यहां लगे हैं। उनको कुछ मिला या भाव जैसे इधर ही गए हैं कृष्ण। पेड़ों से लताओं से पूछते हुए आगे बढ़ी। थोड़ी देर जाने के बाद उन्होंने देखा एक सुंदर ज्योति का अत्यंत सुंदर छोटे छोटे चरण चिन्ह है। ये किसका? कोई गोपी कहते हैं अन्य आराधित हो न्यूनम भगवान हरिश्वर। ओ इस गोपी ने ही हरिश्वर, हरि जो ईश्वर हैं, उनकी सबसे अधिक तपस्या की होगी, आराधना की होगी, इसलिए इस गोपी को लेकर के ही अंतर्ध्यान हुए, अकेले नहीं अंतर्ध्यान हुए। ओ ये तो बड़े भागनी है, उनका मद चूर हो गया। उनको ये था कि केवल हमारी साथ में लेकर के हमारी साथ में नृत्य कर रहे थे और मैं ही उनकी सबसे प्यारी हूं और सुहागिन हूं, यह अभिमान उनका दूर हो गया। जो इसी ने ही विशेष रूप से आराधना की है, किसकी? हरि की, ईश्वर की, जो सर्वांतरयामी उस हरि की। कृष्ण को हरि यहां नहीं कह रही, हरि की आराधना करने से हरि को प्रसन्न कर लिया, हरि के वरदान से वो इसकी सबसे बड़ी प्यारी थी, इसलिए उसको लेकर के साथ में गए। उनका मान एकदम चूर। थोड़ी देर और आगे चली, उनका रहा सहा और अभिमान चूर्ण हो गया। कैसे? देखा जी, केवल मात्र अकेले कृष्ण के ही पैर हैं और दूसरे का पैर नहीं। अभिमान और कैसे चूर्ण हो गया? देखा जी, पैर एक इंची और दबा हुआ है रेती में। ओहो, ये ऐसी सुहागिनी, चल नहीं सकी तो उसको कंधे पर उठा लिया। ओहो, इतनी इनकी बड़ी प्यारी, हमने तो जीवन में इतना प्यार इनसे नहीं पाया। और भी उनका जो अभिमान था दूर हो गया। और उसके लिए बहुत ये हुआ कि ये इतनी उनकी प्यारी है। थोड़ी देर के बाद में देखा घास आ गया, देखा जी कहीं कोई चिन्ह नहीं। थोड़ी देर के बाद में देखा कुछ फूल गिरे हुए हैं, पुष्प, और कृष्ण का केवल पंजे का चिन्ह है, पांच अंगुलियां हैं और पंजे का चिन्ह। ओ, ये देखते हैं कि ये कामी पुरुष का ये चरणों का चिन्ह है। वो निश्चित ही डालियों को पकड़ करके ऊपर की, नीचे की तो सब फूलों को ले लिया है, ऊपर वाला भी फूल रह गया, निश्चित इसको तोड़ रहा होगा, इसलिए पैर की एणी को ऊंचा उठा करके उसको पकड़ करके फूल को चयन कर रहा। यहाँ पर फूल गिरे हैं माने उसकी चोटी का श्रृंगार जरूर किया, यही है श्रृंगार पर्व, यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार किया था। स्वयं पर ब्रह्म जिसका श्रृंगार करते हैं, योगियों के हृदय में नहीं आते, योगियों के लिए निर्विकार निरंजन इत्यादि है। खुल दो, और तो पहले खोलना चाहिए था। जल्दी खोलो। तो क्या कर रहा?
सिंगार, सिंगार,
योग लोग जिनका ध्यान नहीं करते, जिनकी एक एक भ्रम भंगी से ऐसे ऐसे कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांडों का लय और प्रलय और सृष्टि हो जाती है, आज देखो तो कैसे कर्म में निपटते हैं। सारे मर्यादाओं को अपने पैरों से रौंदते हुए प्रेम की प्रतिष्ठा को यहाँ पर करते हैं। प्रेम की प्रतिष्ठा इतनी है जो रामचंद्र जी के रूप में ना कर सके, यहाँ पर उन्होंने इसको किया। बोलो राधा अपनो बिहारी की जय। जय जय आप लोग भी प्रणाम कीजिए। बाकी कहाँ है, क्या करें और आगे बढ़ी। इधर में कृष्ण उनका श्रृंगार कर रहे थे, गोपियां निकट आ गईं। कृष्ण ने उनका हो हल्ला सुना, राधा जी से बोले प्रिया जी ये गोपियां निकट आ गईं, जल्दी से हम लोग यहां से चलें, कहीं छिप जाएं। राधा जी ने सोचा इधर राधा जी ने सोचा मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं, मैं अपने सहेलियों को छोड़कर के अकेले कृष्ण के साथ हूं, इसलिए मैं ऐसा सुयोग करूंगी जिससे कि सब सहेलियां आ जाए तब कृष्ण के साथ में रहें, ऐसा सुयोग देने के लिए। किंतु मालूम नहीं होने दिया उन्हें कि मैं चल नहीं सकती। कृष्ण जी हमारे कंधों पर चढ़ जाओ, उनको तो कंधा पर चढ़ना नहीं था, विलंब किसी प्रकार से करना था। झूठ मूठ को लिए पैर उठाया, इधर कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। जब कृष्ण नहीं मिले तब तो एकदम बेहोश होकर के गिर गए। इतने में गोपियां आई राधा जी को बेहोश पड़ी हुई और रोते हुए देख करके उनको सहानुभूति उत्पन्न हुई। सहानुभूति होने के बाद में कृष्ण तो अंतर ध्यान हो एक ये कथा बोलते रहे
नीचे,
उनको मना कर दो।
गोपियां देखे सहानुभूति हो,
सहानुभूति हुई, फिर मिल करके खोजने लगी और फिर जय तिथि अधिकम का गान किया और कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। किंतु शारदीय रासलीला में ऐसा नहीं, बासंती रास इसकी विशेषता अलग है। यह बासंती रास होती है गोवर्धन में, वृंदावन में नहीं। गोवर्धन में केवल वो साधक फाधक कोई नहीं उसमें जाएगा, उसमें राधा पक्षीय वाली रहती हैं। और उस समय में जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि राधा जी को वहां पर मान होता है, राधा जी वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। मैं रास में नहीं रहूंगी, मैं नित्य नहीं करूंगी इनके साथ में। कृष्ण वहां पर कहते हैं शतकोटि गोपी हरि ते नाली लो श्री कृष्ण रम। राधा जहां नहीं है तो रास किसके लिए, राधा के बिना रास नहीं संभव। बस उसी समय सब गोपियों को प्रत्यक्ष रूप में छोड़ करके, और वहां तो चोरी करके ही गए थे और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में रास को छोड़ दिया राधा जी को खोजने के लिए। और खोजते खोजते फिर राधा जी से मिले, उनका मन का प्रसाद। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने बासंती रास की विशेषता बतलाई है जो प्रत्यक्ष रूप में ही राधिका जी को सबसे अधिक स्नेह करती है। बहुत सी गोपियां उसमें चंद्रावी और राधिका श्रेष्ठ हैं, और इन दोनों में भी रूप गुण सौभाग्य प्रेम प्रीति सब विषय में राधिका जी कृष्ण की सबसे प्यारी है। जिस प्रकार से कृष्ण की राधा जी प्यारी हैं, उनका कुंड भी वैसे ही प्रिय है। इसलिए जो कोई कुंड की सेवा करेगा वो राधा जी की सेवा मान लिया जाएगा। कृष्ण कुंड उन व्यक्तियों पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे राधिका जी पर कृपा करती हैं। कुंड में और राधिका जी में कोई भी अंतर नहीं है, यह भी पुराणों में ऐसा बतलाया गया।
चथा राधा प्रिया कुंड प्रिया सर्व कुपे सिसोई का विष्णु रत्न।
इसलिए आज यह बासंती बासंतर बासंती क्या
बासंती रास
बासंती रास का दिन है। आज ही के दिन में विष्णु प्रिया जी का आविर्भाव, विष्णु प्रिया सत्यभामा जी हैं, पृथ्वी के पृथ्वी इनका अवतार है, भूशक्ति की मूल हैं ये सत्यभामा जी। वही भूशक्ति वैकुंठ में होती हैं और फिर महाप्रभु जी की लीला में ये विष्णु प्रिया के देवी के रूप में आविर्भूत होती हैं। जगदानंद उसमें मिलित हैं, जगदानंद में भी हैं किंतु विष्णु प्रिया जी पहले, जैसे नित्यानंद प्रभु ही बलदेव हैं और विश्वरूप भी बलदेव हैं उसी तरह से। तो विष्णु प्रिया जी भू शक्ति भू देवी हैं, वही सत्यभामा के रूप में यहाँ पर हैं। उनके साथ में महाप्रभु पहले विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया जी के साथ, फिर विवाह हुआ विष्णु प्रिया जी के साथ। कुछ दोनों के बाद ही उन्होंने संसार त्याग किया। जो सबसे अधिक हमारा प्रिय इस जगत में है, सबसे अधिक, उसको यदि कृष्ण प्रेम के लिए कृष्ण के लिए छोड़ दिया जाए तो ये प्रेम है, वह प्रेम भगवान में लगाया जाए। इस जगत में हमारा जो कुछ भी प्रिय है उनके प्रति आसक्ति छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व अपना समस्त प्रेम कृष्ण के चरणों में यदि दे तो ये यथार्थ त्याग है और यथार्थ प्रेम है। संसार में पिता माता सबसे पहले बड़े प्रिय होते हैं, किंतु विवाह के बाद में और माता पिता प्रिय नहीं होते, पत्नी अपने रूप से गुण से अपनी प्रेममयी सेवा से पति को वशीभूत कर लेती है। इसी लोग माता पिता को भी छोड़ करके, माता पिता ने ही पालन किया और उसी ने शादी की, किंतु उनको भी अब अपना प्रेम यदि उनका आदर भी करते हैं माता पिता का सेवा भी करते हैं किंतु स्त्री के प्रति ही उनका झोंक अधिक रहता है। इसलिए यदि कोई उस मूर्तिमती माने ये काम या आसक्ति अपनी पत्नी को प्रत्याग करके यदि कोई आ सके तो घर के समस्त प्रेम को छोड़ दिया, ये इसका ऐसा ये प्रमाण है। महाप्रभु जी अपनी माँ को भी छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया। जिस समय घर से निकले उस दिन शाम को गांव से दूध मांग लाए ग्वालों के यहाँ से और सिधर से एक लौकी मांग करके ले आए। मैया से कहा, मैया आज लकलकी बनाना,
दूध
लकलकी, दूध में लौकी काट करके जैसे परमान्य खीर बनाते हैं ऐसा उन्होंने बनाने के लिए कहा। और उस दिन गांव के सभी लोगों से मिलजुल करके आए, गले से मिल करके जो कभी नहीं करते थे, घर में आकर के मैया ने रसोई बनाई। रसोई बनाने के बाद में ठाकुर जी का भोग लगाया, अब बड़े प्रेम के साथ में आरोगा प्रसाद और फिर अपने पत्नी के घर में गए। उसे बुला करके आज बहुत वर्षों से जब से शादी हुई थी तब से तक कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे, पछाड़ खा करके गिरते थे, आज उनका स्वभाव एकदम चेंज हो गया। उन्होंने पत्नी को बुलाया विष्णु प्रिया जी को और बड़े प्यार से गले में हाथ देकर के उनको बैठाया, अपने हाथ से तंबू की बीड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग देने के बाद में उनको अपने हाथ से खिलाया और बड़े प्यार की बातें करने लगे, हंस हंस करके बोलने लगे। उनका माथा ठनका, इतना प्यार आज कैसे, क्या बात है, उनके समझ में नहीं आया। सोचा जी आज मैं गंगा स्नान करने के लिए गई सवेरे, रास्ते में ठोकर लग गई। नहीं, ये ठोकर क्यों लग गई, आज पहली बार हमारे जीवन में ठोकर लगा। ना जाने आज क्या होना है। किसी प्रकार से स्नान करने गई, स्नान किया, जब स्नान करके डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो नाक का बेसर जो विवाह का अवसर का था वो गिर गया पानी, खुलते खुलते हार गई, प्राण धकफट करने लगा, आज ना जाने क्या होने वाला है। किसी प्रकार से आई रात, रास्ते भर वही चिंता, न जाने आज क्या होना है, आज क्यों हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, दाहिनी भुजाएं फड़क रही है, न जाने आज क्या होगा। अब देखते हैं कि ये ऐसा प्रेमालाप कर रहे हैं, आज तक तो किया नहीं, बड़े हर्षस्तर से बोल रहे हैं, क्या बात है। अपने हाथों से पूछते हैं ये खाई की नहीं तुमने, तो ये तो सोच रही है वही बातें, अपने हाथों से कुछ खिलाया, खूब प्यार किया। थोड़ी देर के बाद में इनको बड़ी नींद आने लगी, जोग माया का प्रभाव उन पर ला दिया, और इच्छा करने पर भी न सोऊं जबरदस्ती सो गए। सोने के बाद में बस उनकी तरफ में देखा और चल दिए। मैया दरवाजे पर खड़ी थी, वो जानती थी आज जाएगा घर छोड़ करके, वहीं पर एकदम काट के समान निर्जीव होकर के खड़ी थी। इवी ने कहा बेटा तू कहां जा रहा है घर छोड़ करके, हमें छोड़ कर, वृद्धावस्था का एक हमारी हाथों की लकड़ी है, तुम भी नहीं चला जा रहा। बड़ा बेटा तो चला गया, पति देव चले गए, मैं वृद्धा छोटी सी बच्ची तुम्हारी पत्नी, और उसको छोड़ करके जा रहा है, कोई बेटा भी नहीं कुछ भी नहीं। अत्यंत एकदम सुख करके काट हो गई, आंखों में आंसू भी नहीं रहे, और चुपचाप देखती रही बस। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित बस वहां से निकले, और निकल करके माँ की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और चल गए। मैया ने उनको रोका भी नहीं, आंसू भी नहीं, और गए और धड़ाम से गिर गई, और वो तो सो रही हैं। बस निद्रा घाट में गए, घाट गंगा का तो सभी घाट पवित्र है, किंतु जिस घाट पर वो कूद पड़े, माँ का महीना, ठिठुरती ही रात, पानी बरस से भी अधिक ठंडा, और उसमें कूद गए और पार कर गए, पता ही नहीं चला। विरह में ऐसा ही होता है, भगवान के विरह में किसी चीज का उसमें ये नहीं रहता, प्राण को हथेली में ले लेते हैं और कूद गए। उस पार जाकर के फिर उन्होंने संन्यास लिया। नित्यानंद वो कहने से संन्यास लेने के बाद में शांतिपुर में आए, वो रास्ता उनका गड़बड़ कर दिया। उन्होंने कहा कि वृंदावन पहुंच गए हैं प्रभु आप। नित्यानंद से पूछा वृंदावन कितनी दूर है, बच्चों को उन्होंने सिखला के कहा था ना वृंदावन तो आ गया, गायें चल रही हैं, और वो सबको देखा सोचा जी वृंदावन है, और सुंदर गंगा के तट पर सुंदर मनोरम दृश्य, वृंदावन जैसे ही कुंज, वहां पर कुंज है नारिकेल के, नारिकेल के कुंज, और आम के अम्र कदम्ब के कुंज हैं, वहां कोयले सब समय कुहू कुहू करती हैं, इधर में मोर वहां पर कोयले, सब समय उधर में बसंत ऋतु छाया रहता है, यहां पर तो अब होता है, वहां पर सब समय बसंत ऋतु छाया रहता है। नदी चारों तरफ से सुंदर पानी निर्मल चारों तरफ से घूम करके नवद्वीप को घेर करके बहता रहता है। वो जबकि वहां पर पहुंचे, नित्यानंद बच्चों से कहवा दिया, बच्चों की बात मानी, ये वृंदावन के
बच्चे सरल हैं,
ये गाय को चराने वाले चरवाहे हैं, गोप हैं ऐसा समझा। उन्होंने कहा जैसे वृंदावन तो आप आ गए, जब नदी के किनारे आए देखा जी तो नदी है, ये सतरूप में वृंदावन आ गया, बस उनका प्राण एकदम सुशीतल हो गया। थोड़ी गौर से देखा, अरे वृंदावन में तो नारियल के पेड़ होते नहीं, यहाँ तो पीलू के पेड़ होते हैं, कदम्ब के पेड़ होते हैं, तमाल के पेड़ होते हैं, यहाँ पर तो इस प्रकार से देख रहा हूँ, अरे ये तो उस पार में अद्वैताचार्य जी का ये घर दिखता शांतिपुर, ये शांतिपुर में वृंदावन में शांतिपुर कैसे आ गया, अरे ये तो देखता हूँ कि उधर में गंगा जी बह रही है। नित्यानंद पूजा हमें कहाँ ले आए, तो प्रभु वृंदावन में ले आए, तो यहाँ जमुना कहाँ है, ये तो गंगा दिख पड़ती है, प्रभु इधर में जमुना जी है, उधर में
गंगा जी।
तुम बहुत चतुर आदमी हो, हमको क्या कर दिया? मैं वृंदावन जाने के लिए तड़प रहा था, हमको तुम फिर यहाँ लाए। इतने में आप द्वैताचार्य उनकी डोर कॉपी और बहिर्वास उत्तरीय लेकर के पहुंचे, उनको पहना दिया। अरे ये द्वैताचार्य भी यहाँ आ गए, बस उनको नौका में जबरदस्ती चढ़ा करके शांतिपुर ले गए उनके द्वैताचार्य के पास। वहां पर उनकी रोती हुई मैया को खबर दिया गया, वो भी आ गए। सब लोग आ गए, सारे नवद्वीप के लोग, किसी कोई नौका से नौका नहीं मिली तो केले का भेला बना दिया। भेला माने केले को दो चार घड़ को बांध दिया एक साथ में, वो तैरता रहता उसके ऊपर में बैठ गए। लाखों लोग, कोई पैदल कोई कुछ तैर करके उस सब पहुंचे, लाखों लोगों की भीड़ वहां हो गई। देखो केवल एक व्यक्ति नहीं आया, बाकी सब आया। कौन नहीं आया? क्यों नहीं आए? जिनका सबसे अधिक जिनका अधिकार वो नहीं है। यदि आती तो क्या होता, सबसे बोलते, किंतु उनसे बोलते कि नहीं, उन्होंने क्या अपराध किया बतलाओ तो। यही प्रेम, उसको किसी प्रकार से सांसारिक युक्ति तर्क वितर्क के द्वारा उसको नहीं समझा जा सकता। विष्णुप्रिया को तभी प्रेम कर रहे हैं, रामचंद्र जी सीता छोड़ दिया, रानी छोड़ दिया, सीता को नहीं छोड़ा है? ऐसे इन्होंने विष्णुप्रिया को नहीं छोड़ा, विष्णुप्रिया को सबसे अधिक मानते हैं। उनके डर से नहीं घर में गए, सुनते हैं कि घर की तरफ में गए किंतु घर में नहीं गए। विष्णुप्रिया जी, घर किसको कहते हैं? घर कौन सा? हम लोग भी तो इस घर में है। यदि गृहिणी नहीं है तो घर नहीं है, तो गृहिणी के साथ यदि प्रेम है तो गृहस्थी है, और यदि गृहिणी के साथ में प्रीति नहीं है तो उजड़ गया वो। महाप्रभु जी वहां पर दो चार दिन रहे, सभी लोग उनसे मिले, और वो वहां पर तड़पती रही और रोती रही, खाना पीना सब छूट गया, दिन रात रोना। कैसा रोती थी विष्णु प्रिया जी। महाप्रभु तो फिर इनको भी छोड़ करके चले गए जगन्नाथपुरी में, उनके लिए वर्ण किया गया चैतन्य चैतन्य रस में सब समय डूबी रहती, और शरीर का होश नहीं रहता, उनके चरणों को कोई नहीं देख सकता था, मुख की तो बात क्या, ऐसे इस आड़ में रहती और हरिनाम करती। महाप्रभु का बतलाया हुआ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये पाठ करती मंत्र जपती, और एक दाना, एक बार मंत्र हो जाता हरे कृष्ण वाला पूरा, एक चावल का दाना उठा करके इधर में रख देती, बाएं से दाएं में रख देती एक जगह, फिर उच्चारण करती हरे कृष्ण, कैसे हृदय के अंतरतम कोण से आंसुओं से तर होते हुए विरह की वेदना में, और कैसे ये नाम कर दे। ऐसा यदि नाम सुनो तो प्रभु को आकर्षण कर लेगा, और जब तक ऐसा नाम नहीं हुआ तब तक प्रतीक्षा कीजिए। ऐसे वो नाम करती दोपहर तक, और एक एक चावल के कण को इधर रखती और रोती रहती और हरे कृष्ण करती। जो कुछ थोड़ा सा हो जाता चावल उसी को वो फिर रसोई बनाती, और बना करके जो कुछ और होता बना करके साग सब्जी और सची माँ के सामने रख जाती, वो ठाकुर जी को भोग आरोप। महाप्रभु जी की पीछे से उनको निम्ब वृक्ष की एक प्रतिमा उनकी बनाई गई थी, और सची देवी को उनको विष्णु प्रिया जी को दिया गया। वो मूर्ति आज भी कहीं पर है, नवदीप में है या कहीं है, उनके विष्णु प्रिया के द्वारा से। अब उसी को भोग लगाया जाता और राधा कृष्ण को भोग लगाने के बाद में सची देवी को उसमें से थोड़ा सा ले लेती और थोड़ा सा उनके लिए रख देती, किसी प्रकार से जीवन निर्वाह उसमें से थोड़ा सा ही शाम के लिए, और बंसी बदनानंद जी के लिए थोड़ा सा प्रसाद रख, बतलाओ तो थोड़े से चावल, एक छठा चावल उसमें मैया खाए और बहू खाए और दो नौकर भी था। इस प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे। हम लोगों जैसा नहीं एक दिन में 5 उत्सव, तबीयत खराब हो जाए। द्वादश घंटा विश्राम चाहिए। भजन न जाने क्या है, हम लोग उठेंगे कै बजे, 4 बजे, 5 बजे, नहीं तो 8 बजे। जिनको भजन की लालसा है वो रात में सोते हैं, सोएंगे ही नहीं, भगवान के विरह में जल रहे हैं। उनको भोजन अच्छा लगेगा, किंतु हम लोगों को भोजन अच्छा लगता है। इसलिए ये सब भजन है, भजन वैसा होना चाहिए। भक्त लोग आग्रह करते जो उनका दर्शन करेंगे, बड़ी मुश्किल से उनके चरणों के ये बस चिन्ह बस दर्शन कर ले, बस और कुछ नहीं। ऐसे करते हुए अपना जीवन बिताया, भजन में जीवन बिताया। ये विष्णु क्रिया देवी आज रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभावती थी। रघुनाथ दास गोस्वामी का तो आप लोगों ने सुना होगा, संक्षेप में यही 2-4 बातें कहते हैं, फिर इसके बाद में कीर्तन करेंगे थोड़ा सा। कल हम लोग इन लोगों का जीवन विशद रूप से वर्णन करें। यदि भक्ति करना है और भगवान के चरणों का भजन करना है तो रघुनाथ दास जी के चरणों का आश्रय लिए बिना और उनका अनुगमन किए बिना वैसा भजन नहीं हो सकता। वो महाराजा राजा के लड़के, एक लड़के, 2 भाइयों में से एक लड़के, अत्यंत सुंदर, अत्यंत धनी राजकुमार, बचपन से संस्कृत की काफी शिक्षा पाई, बड़े विद्वान और बड़े मेधावी थे। थोड़े बड़े होने पर राज्य कार्य भी संचालन करने लग गए, पिताजी की सहायता करते थे। थोड़ी देर के बाद में नित्यानंद प्रभु से संग हुआ और नित्यानंद प्रभु की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से भगवान के प्रति ऐसा प्रीति उत्पन्न हुई। जो कुछ दिनों के बाद में हरिदास ठाकुर से उनका संग हुआ, फिर उनके गुरु जी भी ऐसे जदुनंदन आचार्य मिले, अद्वैताचार्य के शिष्य थे। उनके संग से, हरिदास ठाकुर के संग से नाम के प्रति विशेष उनकी रुचि हुई और अंत में भगवान के प्रति समर्पित हो गए। कुछ दिनों के बाद में घर छोड़ करके भागे, महाप्रभु जी से भेंट हुई। महाप्रभु जी ने कहा, भी पागल मत हो, ना हो बातू, क्रमे क्रमे पाए लोग भवसिंधु को, स्थिर भैया जहां भरे ना हो बातू, क्रमे क्रमे पाए लोग भवसिंधु को, अंतरे करनिष्ठा पाही लोक व्यवहार, अचिराते पावे तुम्हें, अभी जाओ घर में लौटो, वैराग्य ना करो, देख लोग देखा वैराग्य, ऊपर से ऊपरी वैराग्य से काम नहीं चलेगा। ऊपरी वैराग्य बंदर का वैराग्य अथवा कौन नदी, फल्गु नदी का वैराग्य, श्मशान वैराग्य है। किसी के घर में कोई आदमी मर जाता है, उसे कंधे पर लेकर के राम नाम सत्य करते हुए घाट पर ले जाते हैं और लकड़ी इकट्ठा करके उसी में, जिसको इतना प्यार करते थे उसी को उसमें डाल देते हैं और जला देते हैं अपने हाथों से। जलता नहीं है तो क्या करते हैं, बाँस से खोद खाद कर मस्तक को तोड़ देते हैं और तोड़ करके वहां पर और लकड़ी फकड़ी दे करके उसको जला करके ही पानी में उसे बहा करके तब लौटते हैं। और ऐसे नहीं आते, स्नान करके आते हैं पूरे कपड़े के साथ में जिसको पहन करके जाते हैं और घर में आकर के प्रायश्चित करते हैं, यज्ञ कराते हैं, ना जाने क्या ना जो भूत होकर के आकर के पकड़ने लगे जिसको इतना प्यार करते थे। इसलिए उसको कहते हैं मर, और फिर दो दिन देखो बंद कर, बंद कर दो, तुम लोग गड़बड़ किया है। पानी मत डालना, मैंने बंद किया है।
ठीक है ठीक है।
ए बसंती राज
कागज
कल क्या है वो?
Hey, Rajiv. आप लोग कोई भी मत जाएंगे।
अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा बार समिति का, और सभी लोग आप लोग प्रसाद थोड़ा थोड़ा किंचित लेकर के तब जाएंगे। अब इस बैठिए, आरती होगी, आरती के बाद में सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे।
खूब सुंदर।
श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है,
ah
पानी मोटो